यहां जो सूरत का थीम है उस पर वापस आ जाए। हिकमत का तकाजा है कि माँ बाप और अल्लाह के हकूक में तवाजन रखा जाए। और सूरतें ये सारी नाजिली उस माहौल में हो रही थी जहां चपकलश थी, घर घर की बातें थी। पीछे सूरत अलनकबूत में भी हम यही बात पढ़ चुके कि किस तरह अल्लाह ताला ने कहा कि रिश्तों का तवाजन रखो, वहां सूरत अलनकबूत आयत 8 में था, यहाँ थोड़ा सा उससे फर्क अंदाज है। फरमाया आयत 15, वइन जाहदका अला अन तुशरिक बी मा लैस लक बिही इल्मुन, और अगर वो तुम पर दबाव डाल लें कि तुम मेरे साथ शरीक करो उसको, मा लैस लक बिही इल्मुन, जिसका तुम्हें कोई इल्म ही नहीं, तो फिर क्या है, फला तुतिहुमा, तो फिर तुम उनका कहना मत मानो। ये क्या बात है, खुद अल्लाह माँ बाप के हकूक बता रहे हैं और खुद ही कह रहे हैं फला तुतिहुमा, तुम उनकी बात ना मानो। बात समझ आते हैं कि है कोई। और अगर कुरान की तावील करने वाले या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें पेश करने वाले लोग हमें कहते हैं आपको पता है कि आपका कुरान है ना, हाँ जी है, उसमें 21वां पारा है, उसमें सूरह लुकमान 31 नंबर की सूरह है, उसके अंदर 15 नंबर आयत में माँ बाप का जिक्र है और वहां कहा जा रहा है फला तुतिहुमा, उनका कहना ना मानो। तो जिस बंदे ने कुरान नहीं पढ़ा वो मान जाएगा ना कि है, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स। वहीं जाहदा का सूरत अलंकबूत याद आई, उसमें भी ये लफ्ज़ था, चपकलश हो जब इस्लाम का और माँ बाप का मिजाज फर्क हो। माँ बाप जब अपनी औलाद को शिर्क पे मजबूर करते हैं तो इसको यहाँ जिहाद कहा गया, स्ट्रगल करो, रिजिस्ट करो, इंतहाई कोशिश करो, क्योंकि माँ बाप अपने मौकफ पे अड़े हुए हैं और तुम अपनी बात पे हो। तो लड़ने झगड़ने और दबाव डालने का सब मफहूम इस लफ्ज जाहदा के अंदर आ गए। यहां बता दिया कि माँ बाप के तमाम तर तकद्दस के बावजूद, एहतराम के बावजूद, मोहब्बत के बावजूद, इन्हें अपनी हदूद से तजावुज करने और अल्लाह के हक पर डाका डालने की इजाजत नहीं है। यहां वालदैन की बात शिर्क के साथ ली गई ना कि माँ बाप शिर्क पे माइल कर दें तो औलाद उनकी बात नहीं मानेगी, इसी से समझ लीजिए कि ये शिर्क सिर्फ बुत परस्ती की ममानियत तक नहीं है बल्कि ला तुशरिक बिल्ला में हर किस्म के शिर्क की मुतलकन ममानियत है। बल्कि आप इसको अपनी जुबान में समझ लें, मैं हल्का हल्का बोलती हूँ इसलिए कि आप लिख सकें, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अफरात और तफरीत है और बाज़ लोग सारी ज़िंदगी इस गिल्ट में ही रहते हैं कि हम पता नहीं अपने माँ बाप के हक में बख्शे भी जाएंगे कि नहीं। तो असूल समझ लीजिए, अगर वालदैन अल्लाह ताला के किसी हुक्म को तोड़ने को कह रहे हैं तो गोया के वो शिर्क का हुक्म दे रहे हैं। इस शिर्क को कौन सा कहते हैं, शिर्क फिल हुक्म, समझ आ गई ना। अल्लाह का हुक्म कुछ और है, माँ बाप का कुछ और है, तो माँ बाप को ये इजाज़त नहीं है कि अल्लाह के हुक्मों पर चलने से बच्चों को रोक सकें, क्योंकि अल्लाह के मुकाबले में किसी दूसरे को मुता मानना उसको माबूत मान लेने के मुतरादिफ है। जैसे अगर कोई शख्स अपने नफ्स के उकसाने पर हराम में मुंह मारता है तो अल्लाह के हुक्म को छोड़कर नफ्स की बात मानता है, और सूरह फुरकान आयत 43 में हम पढ़ चुके, आराई तमन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया, अफान तकूनु अलैहि वकीला, तो नबी क्या आप ऐसे शख्स की जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ शिर्क के लॉस को समझ लीजिए, ये बहुत हसास मौजू है, माँ बाप की गलत बात नहीं माननी। अच्छा, बात सफा क्या होता है शिर्क की, के अंदर आप दूसरी चीजों को ले आइए कि माँ बाप या दोनों में से कोई एक कोई ऐसी बात करता है जो दुरुस्त नहीं है, मसलन वो किसी की बुराई करता है या आपके माँ बाप हैं वो आपके सामने किसी दूसरे को बुरा भला कहते हैं, आपको साफ पता है कि भाभी और माँ की लड़ाई है तो उसमें कसूर भाभी का नहीं माँ का, आप क्या करें, चूंकि मेरी माँ है, चूंकि मेरी माँ, नो, फिर उसमें क्या कहा कि तुमने ला तुशरिक बी शैयन, उसके साथ बात किसी की नहीं करनी, ला तुशरिक बी मा लैस लक बिही इल्म, लेकिन तुम्हारा अमल क्या होना चाहिए, वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, साथ हक का दो लेकिन माँ बाप के साथ बेहतर अंदाज में रहो। इतना बैलेंस कोई सिखा सकता है, मुझे लगता है गाड़ी की अलाइनमेंट करने वाले भी इतने मुख्तात नहीं होते किस व्हील में कितनी हवा है, किसको छोटा है रखना है, बड़ा रखना है, जितना अल्लाह ने हकूक और जिम्मेदारियों में तवाजुन रखा है। हकूक अदा करो, खिदमत करो, जो उनको जाहरी तौर पे तुमसे चाहिए वो लो, लेकिन तुम उनके लिए गलत चीज पे उनकी साइड ना लो। पीछे हम पढ़ चुके हैं फादिलु हुवा अक़रबु लित्तक़्वा, अदल की बात करो वो तकवा से करीब है, चाहे उसकी जात तुम्हारी अपनी जात पे पड़े, यदि साइड ना लो, गलत बात पे चुप ना रहो। बस दफा हम ताजीम के नाम पे और इज्जत के नाम पे, रिस्पेक्ट के नाम पे दूसरों की गलत बातों पे चुप रहते हैं। नुकसान क्या होता है कि उनको पता ही नहीं चलता बेचारों को कि ये गलत काम है। अब मसलन आप देखिए कि जैसे कुछ बूढ़े जो होते हैं ना, उनके मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है और वक्त के साथ आ जाता है बीमारियां, दवाइयां, सब कुछ। अब वो क्या हर वक्त ही बुराई, एक बहू की बुराई, दूसरी की बुराई, फिर इधर बैठे एक बेटे के पास बैठे तो दूसरे की बुराई, दूसरे के साथ पहले की। तो पहली बात है कि अगर आपकी ये स्टेज है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी एक रिश्ते के साथ दूसरे रिश्ते की बुराई ना करें। अब आपके सामने कोई कर रहा है, आपकी दादी हैं, आप उनके पास गई, वो शुरू हो गई, ये पूछते नहीं, ये खाते नहीं, ये देते नहीं, लेते नहीं, तो आप क्या करें, उनको हंसाएं, उनसे बात करें, आप उनका दिल बहलाएं। हमारे बड़े लोग जितने फारिग रहते हैं ना, उतनी बातें नोट करते हैं, आप उनको मसरूफ करते हैं, लेकिन आप उनका दिल कैसे बहलाएं, झिझक खत्म करें। हमारा हाल यह कि सारी दुनिया को जज़ाकअल्लाह कह सकते हैं, माँ बाप को शुक्रिया भी नहीं कहते, झिझक पड़ी होती है। शुरू से ताल्लुक ऐसा है, वो मोहब्बत वाला ताल्लुक ही नहीं दिखता, और बचपन से तंग भी काफी किया होता है तो डर आता है कि अब इनसे किस रंग से बात करें। तो सारी बात का खुलासा यह है कि फिजिकली अगर उनकी मदद करने में सारी जिंदगी भी करते रहे तो उन कमजोरियों का हक नहीं दे सकते जो बर्दाश्त की उन्होंने, लेकिन यह है कि गलत बात नहीं माननी। कुछ मिसालें देखिएगा सहाबे कराम की। अबू बकर के वालिद का नाम अबू कहाफा था। इन्होंने देखा कि अबू बकर हर गरीब को छुड़ा रहे हैं, यानी गुलामों को आजाद कराते हैं। एक दिन कहने लगे कि मैं देखता हूं कि तुम मिस्कीन गुलामों को छुड़ाते हो, किसी मजबूत को छुड़ाओ, जरा सेहतमंद को छुड़ाओ ताकि तुम्हारे काम करें। समझ आई? क्योंकि उस दौर में गुलाम तो मशीनों की तरह थे। तो अबू बकर ने अपने बाप की बात नहीं मानी। समझ आई बात? बाप अच्छे काम से रोक रहते ना, मनवाई नहीं, लेकिन साहिब हुमा पे अमल किया होगा इंशाल्लाह, ठीक है। फिर इसी तरह हिजरत जब करने लगे तो अबू बकर ने क्या कहा, मैं हिजरत का पता था। बाप ने कहा देखो वो जो 4000 दिरहम घर में पड़े हुए ना, ये नहीं देने तुमने, साथ नहीं लेके जाने। अब अबू बकर को पता था कि इसकी जरूरत पड़ेगी, सफर में है, सब है, तो क्या किया, ले गए। लेकिन उसकी जगह पे उनकी बेटी असमा ने एक थैले में पत्थर डाल के दिखा दिए बूढ़े दादा जो नबीना थे, कहते अब्बा रखे हुए, हाथ लगाए काचा ये सोना ही होगा। तो ये बातें हमें सिखाती हैं कि गलत बात नहीं माननी, लेकिन बदतमीजी नहीं है, खामोश रहे। सबसे बेहतरीन इलाज खामोशी है। अच्छा अब क्या करें कि माँ बाप गलत बात कह रहे हैं, बात उनकी माननी नहीं, खिदमत उनकी बहुत अच्छी करनी है और उनके सारे काम करें, तो फिर बात किसकी मानो। अगले जुमले में वत तभी सबील मनाना व इलैया, और पैरवी करो उस शख्स की जो मेरी तरफ रुख कर चुका है। ये कौन है जो माँ बाप से ऑपोजिट बात कह रहा है, यानी नबी या अपने दौर का उस्ताद या मुबल्लिग। बाज दफा माँ बाप कुछ और कहते हैं लेकिन दीन कुछ और कहते हैं, तो यहां मन अनाब से मुराद दीन के रास्ते पे चलने वाला वो शख्स जो रसूल के रास्ते पे चलता हो तुम भी उस पे चलो। पीछे बात थी सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम की, तो गोया के बात यह है कि हक का साथ दो। अनाब का लफ्ज नौब से है, नून वाउबा, लफ्ज मुनीब भी इसी से आता है, तौबा और इखलास के साथ अल्लाह की तरफ पलटना। मोहम्मद बिन सीरी एक बहुत बड़े इमाम थे, अपने माँ के शौक का ख्याल रखते, उनकी माँ को पहनने ओढ़ने का शौक था, बड़े नरम कपड़े उनके लिए खरीदते, ईद के लिए अपने हाथ से कपड़ा रंगते अपनी माँ के लिए, ऊंची आवाज से ना बोलते, ऐसे बोलते जैसे राजदारी का अंदाज होता है। इसी तरह वैस करनी का नाम आप सबने ही सुना होगा कि जिनके बारे में कहते हैं खैरुन ताबीन, ताबीन में से सबसे बेहतरीन का लकब है इनका, और इनके बारे में यह भी आता है कि अगर वो कसम खा लें तो अल्लाह पूरी कर दे। खुद अल्लाह ने के नबी ने हजरत उमर को कहा कि अगर तुम्हारी उवैस से मुलाकात हो तो उनको मेरा सलाम कहना। वजह क्या थी, आना चाहते थे अल्लाह के नबी को मिलने के लिए लेकिन माँ की खिदमत की वजह से नहीं आते। अल्लाह का करना देखिए कि माँ का इंतकाल हुआ, फारिग हुए, कहा चलता हूं, रुकावट दूर हो गई, तो इतने में इतला आ गई कि अल्लाह के नबी का भी इंतकाल हो गया। तो कुछ नेकियां अब टाइम बाउंड होती हैं, ये नहीं कर सके, तो ये अल्लाह के हुक्म से। इसी तरह एक शख्स इब्ने अब्बास के पास आया, कहने लगा मैंने कबीरा गुनाह किया है, मैं क्या करूं। कहने लगे जाओ माँ से अच्छा मामला करो। कहा माँ तो फौत हो गई है, तो कहा कि फिर खाला से अच्छा सलूक करो। एक और शख्स के साथ भी यही बात हुई, तो आपने कहा कि अल खालतु बिमनज़िलतु उम्मन, खाला माँ के बराबर है। अच्छा अब हम अपनी जाहरी लेन देन और अपने ताल्लुकात और खाने पीने दावतों में तो बहुत खुश रखते हैं इन लोगों को, लेकिन दीन समझ के कम ही हम अपनी खालाओं और मामों और इनके साथ ताल्लुक रखते हैं। یہ اللہ کی بات ہے. اسی طرح ایک موقع تھا کہ اللہ کے نبی جیرانہ کے مقام پر گوشت بانٹ رہے تھے غریبوں میں, اتنے میں ایک عورت آئی, اللہ کے نبی اٹھے اپنی جگہ سے, اپنی چادر زمین پہ بچھائی. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ایک عورت کے لیے اتنا اہتمام ہے, تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ اللہ کے نبی کی رضائی ماں تھی. آپ نے ان کی اتنی عزت کی کہ ان کو وہاں بٹھایا اور ان کے لیے بات کی. تو لہٰذا ساری بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ انسانوں میں سے کسی کی بات تب ماننی ہے جب وہ اللہ کی بات کے اندر ہو, اس کے بعد نہیں. ثم الی مرجعکم, پھر تمہیں میری ہی طرف پلٹ کے آنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون, پھر میں تم کو خبر دوں گا اس کی جو تم عمل کرتے تھے. یعنی آخر آنا تو تم نے میرے ہی پاس ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اولاد کی نصیحت کے بیچ میں آخرت کا ذکر, پیچھے بھی گزرا یہاں بھی. یہ بھی نقطہ نوٹ کر لیجئے گا کہ اولاد کے تزکیے کی بہترین چیز ہے کہ ان کو آخرت اورینٹڈ بنا دو. ہم دنیا اورینٹڈ بنا کر دنیا کی ساری چیزوں میں رکھتے ہیں, نقصان کیا ہوگا؟ ہاں نقصان یہ ہوگا کہ ان کو دنیا ہی اچھی لگے گی. تو بچوں کا عقیدہ آخرت پختہ کر دیں. جب ہمارے پاس آؤ گے تو کیا ہوگا؟ اب یہ آیت اللہ کے حکم کی تھی. لقمان کی دوسری نصیحت کا ذکر آگے آ رہا ہے, آیت 16. یا بنیا, اے بچے, اے میرے پیارے بچے, انہا انتکم اسقال حبت من خردل, اگر کوئی اچھا یا برا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو, چھوٹے سے چھوٹا مراد ہے, بالکل باریک سا, اور حبت من خردل رائی کے دانے کے برابر عموماً چھوٹی اور حقیر چیز کے لیے عرب لوگ بولا کرتے تھے. جیسے فتیل کا لفظ بھی آتا ہے سورہ نساء 49 میں, اور نقیر کا لفظ بھی آتا ہے نساء 124 میں. رائی کا دانہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, عام آنکھ سے نظر بھی نہ آئے اگر کہیں دور پڑا ہو. کا فتکن فی سخرتن, اگر وہ ہو کسی چٹان میں. سخرہ کہتے ہیں چھوٹے پہاڑ کو, انگلش میں لکھیں گے تو راک, چھوٹے چھوٹے پہاڑیاں جو ہوتی ہیں. او فی السماواتی, یا آسمانوں میں. او فی الارضی, یا زمین میں, جہاں بھی ہوگا. ہوگا کیا؟ یاتی بہ اللہ, لے آئے گا اس کو اللہ. کیونکہ ان اللہ لطیف خبیر, یقیناً اللہ تعالیٰ بہت باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا. جیسے سورت زلزال میں آیت 7-8 میں فرمایا, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا, جو کوئی ذرہ برابر بھلائی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا, اور جو اچھا کام کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا. اب یہاں اس ایک آیت میں دیکھیے کہ لقمان اپنے بیٹے کو اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی دلا رہے ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے, تو گویا کہ اللہ اکبر کا عملی نمونہ. دوسری بات یہ ہے تقوی. تقوی کیا ہے؟ کہ رات کی تنہائیوں میں بھی غلط کام کروں گا تو اللہ دیکھتا ہے. نیکی کا چھوٹا یا بڑا عمل انسان کرے, اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. آپ کی حالت کتنی مجبوری کی تھی, کتنی سستی کی تھی, کتنی چوائس تھی, اللہ کو سب پتہ. جس دن بندے کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا, تو نہ تو وہ ریاکاری کرتا ہے کہ دکھاوے کے کام کرے, اور نہ وہ نیکی کے کام چھوڑ سکتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرا نام اعمال آج کے دن خالی جائے گا. ایسا بندہ لوگوں کی تعریفوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے, اور جب آپ لوگوں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں نا, یقین کریں کہ آپ کی صحیح کریکٹر بلڈنگ اس دن شروع ہوتی ہے. اخلاق اور کردار میں پختگی آتی ہے. چھپ کے بھی کام کروں گی تو اللہ کو پتہ چل جائے گا. قیامت کے دن کرنے والے کو بھی اور لوگوں کو بھی دکھایا جائے گا, اور انسان انکار کر ہی نہیں سکے گا. اعمال تک کا وزن ہوگا. مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بے سوراخ کے پتھر, یعنی ایسا پتھر جس میں کوئی ہول بھی نہیں ہے, اس میں بھی عمل کرے گا, تو جس کا کوئی دروازہ نہ ہو, کھڑکی نہ بھی ہو, اللہ اس کو بھی بندوں پر کھول دے گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ انسان کوئی کام کرے چھپ کے بھی, تو اللہ اس کو اس کے گھر والوں میں رسوا کر دے گا. آج کے دور میں یہ کیا مشکل ہے. سیٹلائٹس کے ذریعے آپ کے گھروں کے اندر تک گوگل آ کے جھان لیتا ہے. اپنی مشینوں سے آپ کے گولڈ کو باہر سے دیکھ لیتے ہیں, تو کیا بڑی بات ہو گئی. تو جو گھروں میں چھپ کے غلط کام کرے, پھر وہ دوسروں کے بیچ میں بھی کر لے, کیونکہ اللہ تو دونوں جگہ دیکھتا ہے. ایکس رے مشین کیسے آپ کی ہڈیوں کے اندر جھانک لیتی ہے, الٹرا ساؤنڈ کیا ہے, اور ان سب کو بنانے والا رب کیوں نہیں دیکھ سکتا. آج آپ ٹریفک میں سے گزرتے ہیں, آپ غلطی کرتے ہیں, گھر میں ٹکٹ کیسے آ جاتا ہے؟ ان کے کیمرے بڑے ہیں یا اللہ کے؟ پولیس مین کو دیکھ کر تو ہم پیچھے ہو جائیں, تو اللہ کے فرشتوں کا ڈر نہ ہو, تو کوئی عمل خالص ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ انسان اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس احساس کو اپنے اندر نہ لے آئے. اللہ کے لیے ہوتا ہے پھر وہ کام. हर इंसान को अपनी प्राइवेसी बहुत अजीज होती है ना। अब जब ऐसे काम गलतियां बचपन में की होती हैं तो उसको छुपाना चाहिए, रिवायत में आता है। हम पहले बच्चों के साथ शेयर कर देते हैं ऐसी बातें और फिर उसके बाद हम वही हमें ताने देते हैं, खुद तो सब कुछ कर लिया, हमें रोकते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि बच्चों को गॉड कॉन्शियस बनाना है, पीपल कॉन्शियस या सेल्फ कॉन्शियस नहीं बनाना। जरा सोचिए, लिखिए कौन से जुमले हैं जो हम बच्चों को सिखाते हैं ऐसे शिर के। लोग क्या कहेंगे, जल्दी कर लो मेहमान आने वाले हैं, लोग बातें करेंगे। बाज दफा बच्चे छुप छुप के माँ बाप से चैटिंग करते हैं, माँ बाप नहीं देखेंगे, अल्लाह तो देखता है। तो बच्चों को डराइए। किस तरह से हजरत लुकमान ने अपनी वसीयत में शिर्क और इंसानी अमाल के लाजमी नताइज के बाद दोबारा उठने का जिक्र कर दिया। यहाँ देखिए, जन्नत और जहन्नम का जिक्र नहीं है, इनकी नसीहतों को भी अगर गौर करेंगे ना, एथिक्स हैं। यानी आपके फितरत की रोशनी में जो बंदे को सूझता है, जैसे आज बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स अपने बच्चों को अच्छे एथिक्स सिखाते हैं लेकिन वो मरने के बाद की बातें नहीं सिखा रहे होते, क्योंकि इसके लिए वही और नबूवत की तालीमात की जरूरत होती है। इसी से फिर उलमा कहते हैं कि ये नबी नहीं थे और इन तक नबूवत का कोई नजरिया पहुंचा भी नहीं। लेकिन अब अगली आयत में नमाज का जिक्र आ रहा है तो उस पर बात करते हैं। आयत 17, या बुनै अकीम अस्सलाह, ए मेरे बच्चे नमाज कायम करो। नमाज क्या है? अल्लाह का जिक्र और उसका सबसे बड़ा जिक्र। 21वें पारे की पहली आयत याद कर लीजिए। नमाज की इकामत और पाबंदी से क्या मुराद है? कि नमाज की कैफियत को हर वक्त अपने दिल में महसूस करें। पीछे एक जुमला लिखाया था, फिर बोल देती हूँ, याद हो जाएगा आपको इंशाल्लाह। इंसान हर वक्त हालत नमाज में तो नहीं रह सकता, हाँ कैफियत नमाज में रह सकता है। और नमाज की कैफियत क्या? खुशू खाशीन और कूमो लिल्लाही कानितीन। जो बंदा नमाज को अपने ऊपर महसूस करेगा ना, उसका दिल गुनाहों में आएगा, शैतान वरगलाएगा, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानेगा। और सूरत अल-अनकबूत की आयत नंबर 45 जो इस पारे की पहली आयत है, उसमें पढ़ चुके, युतलू मा उहिय इलैका मिनल किताबी वस्वकीमिस्सला इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और मुनकर से रोकती है। अब यहां देखिए कि लुकमान की नसीहत का मफहूम क्या है, कि बेटा देखो, अल्लाह को पहचान लेना काफी नहीं है, उसको याद भी रखो। अब उस दौर में ना तो नबुव्वत थी उनके पास, तो यहां फिर किस नमाज की दावत दे रहे हैं? तो मुराद है अल्लाह को राजी रखना, उसको याद करना और भटकने से बचना। और हर दौर में हर इंसान ने अपने अपने तरीके से इबादत की है, चाहे नमाज दें। हमें ये नहीं पता कि उस तरह क्या थी, लोग अपने दिन का कोई हिस्सा चूज करते थे और उसमें इबादत कर लेते थे। और अकीम का लफ्ज देखिए, वाहिद का सीगा है। इससे एक उलमा ने बहुत खूबसूरत नुक्ता निकाला है, कहते हैं कि बच्चों को वन ऑन वन बेस पर तबलीग करना चाहिए। जब हम बहुत सारे लोगों को एक ही जगह जमा कर देते हैं ना, तो हर बच्चे का मिजाज भी फर्क होता है, तरीका फर्क होता है, उनको ऐसी चीजों से अलग कर दिया जाता है। तो बहरहाल क्या पता चला कि उनको अलग से नसीहत करें। और आप भी अपने बच्चों को पहचाने, कोई मोहब्बत की जुबान समझता है, कोई गुस्से की समझता है, तो बच्चों को ना समझ कर तबलीग करना ये हिकमत से खिलाफ बात है। अगली आयतों में देखिएगा, वामुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर, और नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। ये चौथी नसीहत है, ये है असल में इंसान को इंसान बनाने वाली चीज, कि इंसान की इंसानियत, उसकी शराफत, उसकी मुरव्वत का ये कहा है कि वो दूसरों के लिए भलाई करे। और दूसरों की भलाई का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। आपको तब इसमें कोई शक नहीं है ना, बच्चों को लीडर बनाना सिखा रहे हैं। बुराई देखो तो बर्दाश्त नहीं करो बल्कि उनकी इसलाह करो, ये सिखाया जा रहा है, लेकिन आजजी के साथ। अब आप बताइए, बच्चा क्या हुक्म देगा? क्या जाके वहां तबलीगी जमात में शामिल हो जाओ, किसी इल्मी ग्रुप को कर लो? नहीं, बच्चों का शऊर बुलंद करें। वामुर बिल मारूफ, बुरे और भले का फर्क पहचानो। बच्चों में, दोस्तों में कोई किसी का शॉर्पनर ले रहा है तो उसको समझाओ कि ये नहीं लेते। कोई स्कूल के डेस्क के ऊपर कुछ लिख रहा है तो कहते हैं ये नहीं करते। बच्चों को उनकी जुबान में सिखाएं, बुराई को देखे चुप नहीं रहना, क्योंकि हम कहते हैं बच्चा है बच्चा, हम तो बच्चों की बुराइयां नहीं टोकते, कहां उनको कहेंगे तुम दूसरों की टोको। तो गोया के पता चला कि बच्चे के अंदर शऊर पैदा कर रहे हैं बुरे और भले का। हकूकुल्ला के बाद सबसे बड़ा हक बंदों का जो इंसान पे है ना, खैर ख्वाही का ये है कि किसी को गलत काम से रोको। तबलीग जो है ना, ये जिंदगी का मकसद है। बेहिस लोग, मुर्दा दिल लोग तबलीग नहीं कर सकते। और जब तक आप बाहर के घर गली को साफ नहीं करेंगे, आपका घर कितना भी साफ क्यों ना हो, आप साफ नहीं रह सकते। पीछे देखिए, जाती जिंदगी के लिए बच्चे को क्या कहा, अकीमिस्सला, और अब इज्तमाई जिंदगी का तकाजा, वामुर बिल मारूफ, क्योंकि हम तन्हा नहीं रह सकते। अब सवाल पैदा होता है, लोगों को तो बहुत गुस्सा आता है जब हम उनको अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर कहते हैं, तो कहा वस बिर अला मा असाबका, और जो भी तकलीफ तुम्हें पहुंचे उस पर सब्र करो। यानी अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के अमल का लाजमी तो नतीजा क्या है कि लोग आपसे चिड़ेंगे, क्योंकि हक कड़वा होता है, किसी को तनकीद नहीं अच्छी लगती। अपने रवैये और अमाल को हर बंदा ही डिफेंड कर रहा होता है, तो जब आप ऐसे हालात करेंगे, नसीहत करेंगे, तो लोग आपके ऊपर कीचड़ उछालेंगे, आपका रास्ता रोकेंगे, तो कहा फिर सब्र करो। वही बात है कि व तवासो बिल हक की व तवासो बिल सब्र। अब बच्चों को सब्र सिखाना, उफ इतना बड़ा काम, तो कहा इन्ना ज़ालिक मिन अज़्मिल उमूर, है ये बड़ी यकीन की और हिकमत की बातों में। अगर आप ये जो आखिरी सम पढ़े ना आयत 17 का गौर करें ना, तो लुकमान की इन चार नसीहतों में वही चार बातें हैं जो सूरत अल असर में, इल्लल्लज़ीना आमनु वामिलु सालिहाती वतवासो बिल हक्की वतवासो बिस सब्र। इसलिए सूरत असर को पूरे दीन का खुलासा कहते हैं कि सिर्फ अगर सूरत असर ही नाजिल हो चुकी होती तो लोगों की नसीहत के लिए ये काफी है। ईमान की जगह लुकमान ने तौहीद का जिक्र किया, आमाल सालेह में से नमाज और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का जिक्र किया, तवासी बिल हक की जगह उन्होंने वामुर बिल मारूफी वनहा निल मुनकर की बात की, और यहाँ व तवासो बिस सब्र की जगह सब्र की बात की। चलिए ये भी बात हो गई, बच्चों को सब्र सिखाते हैं, कंट्रोल योर डिजायर्स। सब्र में सबसे मुश्किल चीज जो है ना, आप एक लफ्ज लिखिए, आप अपने बच्चे को सब्र कैसे सिखा सकते हैं जब उसकी मर्जी के खिलाफ के हालात पैदा करेंगे ना। देखिए समझिएगा थोड़ा सा इस मौजू को, ये बड़ा क्रिटिकल इशू है, ये आज का प्रॉब्लम है। आप अगर अपने बच्चे की हर बात मानते जाते हैं, उसकी बातें कबूल करते हैं जो वो गलत काम करता करते हैं, तो वो सब्र किस पे करेगा? सब्र कैसे सिखाएंगे उसकी मर्जी के खिलाफ काम करके? आज तो मां छोटे बच्चे का 2 मिनट रोना नहीं बर्दाश्त करती, उसके हाथ में फोन पकड़ा देती है, खेलो इसे, उछलो कूदो, जो मर्जी करो। गलत बात है, बहुत मुश्किल काम है। सब्र सिखाने के लिए टॉलरेंस और बर्दाश्त, खुद काम करना आसान होता है, दूसरों के नफ्स के खिलाफ जाकर उसको कोई बात सिखाना ये बहुत मुश्किल होता है। और याद रखिए सब्र मुखालफतों के जवाब में भी, और खुद को संभालने के लिए भी। खुद को संभालने के सब्र का नाम क्या है? इस्तकामत। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तकामु। और मुखालफतों के जवाब में सब्र के तवासी भी सब्र। सब्र होता है दूसरों की तरफ से आने वाली तकलीफों को यक तरफा तौर पर बर्दाश्त करना। इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। जरा गौर कीजिए, इकामत सलात के बाद, अमर बिल मारूफ के बाद, नहीं अनिल मुनकर के बाद, अब सब्र की बात करके कहा यह है बड़ी मुश्किल चीज है। नमाजें फिर भी आसान है, ये मुश्किल है। और अज़्म कहते हैं किसी काम को कतई और हतमी तौर पे करना और करके ही छोड़ना, अटमोस्ट डिटर्मिनेशन। बहुत सारे लोग नमाज पढ़ लेते हैं, रोजा रख लेते हैं, लेकिन सब्र नहीं कर पाते, बुराइयों पर तनकीद नहीं सुन सकते ना कर सकते। बस लोग सिर्फ फिजा के साजगार होने का इंतजार करते रहते हैं, कोई मेरा साथ दे, मेरे घर के हालात ठीक हो जाएं, फिर बहुत नेक हो जाऊंगी। ऐसे लोग कभी काम नहीं कर सकते, आपके हालात कभी भी ठीक नहीं होंगे। ये ठीक तब होंगे जब आप ये काम सही तरीके से करेंगे। दीन का काम नमाज रोजा छोड़कर आप अपना घर कितना कुसाफ कर लेंगे? आप कहते हैं ना कि मैं नमाजें पढ़ती रहूंगी, घर साफ नहीं होता, नमाजें एक हफ्ता छोड़ती हूं, जरा सारा घर साफ कर लूं। ये आप अपने आप को डिप्रेशन में ले जाने की दवाई खा रहे हैं। सब साथ चलेगा, आप भी एक्टिव रहेंगे, सिर्फ आपको खुद को फास्ट करने की जरूरत है। लम्हों पे नजर, घड़ी चलाकर, स्टॉप वॉच चलाकर काम करें, फिर देखें काम कैसे होता है। वही काम करेगा जो हर कीमत पे करना चाहेगा, एट एनी कॉस्ट, एट एनी थिंग। जैसे हजरत इब्राहिम कूद रहे थे आग में, उनको नहीं पता था बचूंगा कि नहीं, कूद पड़े, अल्लाह ने बचा लिया। पीछे खड़े होते तो हो सकता है वो आग की जो लपट थी उससे कोई स्किन की डिजीज ही हो जाती। ये जो हम जितना दीन से बचते हैं ना, वो कहीं ना कहीं पलट के फिर हमारे ऊपर पड़ता है, तो पक्के इरादे की बात है। और जब तक हम दूसरों को नहीं बताएंगे, खुद भी नहीं बचेंगे। माँ खुद नहीं बताएगी दूसरों को, तो अपने बच्चों को कहाँ सही करेगी? और जो माएँ खुद ब खुद इन कामों में लगी होती हैं, आप देखते हैं बच्चों के कानों में पड़ता है। जो बच्चे यहाँ आके बेबी सिटिंग में सारा दिन कुरान कुछ ना कुछ बातें सुन रहे हैं, जो जो उनका शौर पक्का होगा, आप देखेंगे उनको ये बातें याद हो जाएंगी। बड़े होके वो कहेंगे ये बातें हमने बचपन से सुनी हुई हैं, आज नहीं लग रहा कल लगेगा। तो तरबियत के सुनहरी असूल हैं ये, अगर हम इस पे अमल कर सकें। हर माँ बाप की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर आप देखिए हम जमा के सीखे आ गए ना इन पे, तो ये इज्तमाईयत भी सिखाई जा रही है। मिल के काम करो बेटा, टीम वर्क, शेयरिंग, केयरिंग। हम अमूमन सोचते हैं कि अमर बिल मारूफ ये तो स्कॉलर्स का काम है, और है ना एक तबलीगी जमात बेचारी वो कर रही है तबलीग। हालांकि ये फितरत का तकाजा है। यहाँ फिर वही बात आ जाएगी, हिकमत और फितरत और अकल वाली। अकल से पूछेंगे तो आप कभी तबलीग नहीं करेंगे। अकल क्या कहती है, इतनी अच्छी महफिल चल रही है, आप तुम यहाँ कहो मगरिब का वक्त हो गया, उठो नमाज पढ़ें, चुप करो बैठो। अकल आपको शॉर्ट टर्म फायदा सुझाएगी, आपकी फितरत कहेगी उठो पढ़नी पड़ेगी नमाज वरना छत गिर सकती है। तो फितरत पे जिएंगे फायदा होगा। और आप देखें कि बच्चे हमेशा माँ बाप को क्रिटिसाइज करते हैं बुराइयों पे। ये हुक्म तो दे दे माँ बाप, लेकिन बच्चों ने सबसे पहले अपने माँ बाप को बुझा, अम्मी झूठ नहीं बोलते, अम्मी आपने कहा था आइसक्रीम दिलाऊंगी किधर गई? हाँ आप एक दफा बच्चों को इजाजत तो दें कि बेटा जरा आप अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करो, वो आपको आपकी सहेलियों में शर्मिंदा कर देंगे। इसीलिए लोग अल्लाह से डरे ना डरे बच्चों से डरते हैं। एक बड़ी अच्छी साथी है, भोली सी है, तो उनकी 8-10 साल की बच्ची है, कहती है बड़ी नेक है, ये पैदा होते से ही नेक है। तो कहती है वैसे मुझे इसे डर बड़ा लगता है, ये मुझे बहुत डोकती है, ये स्कार्फ पहनती है, मुझे कहती है अम्मी आप क्यों नहीं पहनती? तो कहती मैं इसे बहुत डर डर के रहती हूँ कि ये बड़ी अम्मा मुझे ना टोके। तो बच्चों को इजाजत दे के देखिए कि बेटा तुम मुझ पर तनकीद करो, फिर देखिए क्या होता है।